ऑप्शन थे, आइए आपको हम कोई भी टेक्स्ट को कैसे याद किया जाए, चाहे ज्ञान का टेक्स्ट हो, मुरली हो, उस कैसे याद किया जाए इसके बारे में बताते हैं। कोई भी ज्ञान का पॉइंट्स हो, आप देखेंगे हर एक ज्ञान को लोगों ने एक चित्रों की भाषा में ही एक्सप्रेस किया है। जैसे आप रामायण ले लीजिए, रामायण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसका नाम रखा रामचरितमानस। रामचरितमानस का मतलब कि राम अर्थात आत्मा का चरित्र मन के अंदर कैसे होना चाहिए, आत्मा रूपी पुरुष का चरित्र मन के अंदर कैसे होना चाहिए, इसी का नाम है रामचरितमानस। मानस का मतलब भी मन से, और इसी को साइकोड्रामा कहते हैं। जितने भी कहानियां लिखी गई है वो सारे एक साइकोड्रामा है, एक अंदर के भाव का चित्रीकरण है। यहां तक कि परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि वो धर्मराज का रोल प्ले करते हैं, और धर्मराज का जो लेखा जोखा है वो चित्रगुप्त करता है। और यहां पे भी जो नाम है चित्रगुप्त, वो क्या है? चित्रगुप्त का मतलब हुआ हमारे बुद्धि के अंदर जो छिपे हुए गुप्त चित्र है, जो हमारी स्मृतियों में छिपा हुआ चित्र है, उसी को चित्रगुप्त कहा जाता है। क्योंकि हर एक आत्माओं के अंदर जैसे एक एटम होता है, और आज के डेट में एक मेमोरी का चिप होता है, उस चिप में भी क्या रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है। इतनी सी छोटी सी चिप में पूरा कितना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। उसी तरह साइंस से आगे साइलेंस है। साइलेंस पावर के द्वारा यानी परमात्मा ने ऐसी रचना रची है कि हर एक आत्माओं के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेमोरी है, उसमें जो भी हम कर्म करते हैं उसका वीडियो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। उसी को रिकॉर्डिंग को चित्रगुप्त कहा जाता है, यानी वो चित्रगुप्त रूप में अनकॉन्शियस माइंड में छिपा हुआ है, जिस चित्र को परमात्मा ही देख पाता है। यानी जब भी हम परमात्मा के सामने जाते हैं, कोई परमात्मा को गवाह की जरूरत नहीं होती है, वो हमारा वीडियो ऑन कर देता है और वो गुप्त चित्र हमें दिखाई देने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि धर्मराज ने चित्रगुप्त को काम दिया है लिखने के लिए, जो कर्मों का लेखा लिखता है। तो ये चित्रगुप्त भी यही है। जितने भी भाव है, भाव के अर्थों को चित्रों में प्रकट करना बहुत जरूरी है कोई भी चीज को याद करने के लिए। अब जैसे एक नॉर्मल चीज, नॉर्मल जिनके चित्र ऑलरेडी प्रेजेंट है वो भी याद कैसे होगा, उसको भी याद करने के लिए एक लिंक बनाना पड़ता है। ये लॉ ऑफ मेमोरी है। लॉ ऑफ मेमोरी मतलब एसोसिएशन और थर्ड आई से विजुअलाइजेशन, मतलब कोई भी चीज को एसोसिएट करना, थर्ड आई से उसको देखना। और जब भी हम एसोसिएशन करें, एसोसिएशन ऐसा हो कि यूनिक हो, थोड़ा अलग हो, हट करके हो, यानी रिडिकुलस भी हो, फनी भी हो, तो वो चीजें जल्दी याद हो जाती है। जैसे पहले मैं एक्सरसाइज कराता हूं नॉर्मल चीज याद करने के लिए, मैं आपको जस्ट 15 या 20 शब्द बोलता हूं, आप ध्यान से सुनिए याद करने के लिए। जैसे मैं बोलता हूं डॉग, शू, मूवी, ड्रैगन, साइकिल, टेलीफोन, पेन, पेप्सी, टाइगर, म्यूजिक, डांस, ऑफिसर, जू, माउंटेन, रिवर, एलिफेंट, पिकनिक, अमिताभ बच्चन, हेलीकॉप्टर, अम्ब्रेला। अब ये शब्द आपने सुना, इन सारे शब्दों के चित्र ऑलरेडी है, जो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद नहीं हुआ आपको। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इन चीजों को सुना, इन चीजों को एसोसिएट नहीं किया और देखा नहीं थर्ड आई से। अभी जैसे ही आप इन चित्रों को एसोसिएट करेंगे और थर्ड आई में से देखेंगे, ये आपके मेमोरी में छप जाएंगे। कैसे? अभी देखिए, अभी आप आंख बंद करके इन सारी शब्दों को जो मैंने बोला इनको आप देखिए, जैसे मैं इनको एसोसिएट करके बताने चाह रहा हूं। अभी आप देखिए, एक व्हाइट डॉग ब्लैक शू पहना हुआ है, देखिए व्हाइट कलर का डॉग ब्लैक शू पहना है, मूवी देखने जा रहा है। मूवी देखने में वो एक मूवी के पर्दे पे ड्रैगन आ रहा है जो साइकिल चला रहा है। ड्रैगन साइकिल चलाते चलाते एक टेलीफोन को टक्कर मार दिया, टेलीफोन नीचे गिर गया। टेलीफोन को रिपेयर करने के लिए वहां पे एक पिन रखा है, पिन के निब को यूज किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर की तरह रिपेयर होता है। और पिन के जो पीछे वाला पोर्शन जिसमें इंक भरा हुआ है, उसमें इंक के जगह पे बहुत बड़ा पेप्सी का बोतल लगा हुआ है। तो इस तरह का पेन का इमेजिन कीजिए कि जिसका निब स्क्रू ड्राइवर की तरह है और पीछे पेप्सी का बोतल लगा हुआ है। दिस इज फनी। अब आप देखिए कि आपके सामने टाइगर आ रहा है, पेप्सी को टाइगर को दे दिया जाता है, टाइगर पेप्सी पी लेता है। म्यूजिक ऑन हो जाता है, टाइगर डांस करने लगता है। तभी एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, ऑफिसर, और टाइगर को पकड़ करके जू में बंद कर देता है। फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर माउंटेन क्लाइंब करता है, आप देखिए माउंटेन का सीन। और माउंटेन को क्लाइंब करते समय एक रास्ते में नदी आती है, नदी को पार करना है, वहां पे एक एलिफेंट है, एलिफेंट के बैक पे बैठ जाता है, नदी को पार करता है, नदी को उस पार जाता है। एक पिकनिक का सीन दिखाई देता है, पिकनिक का होस्ट अमिताभ बच्चन है, वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर जाता है, उससे ऑटोग्राफ लेता है। अमिताभ बच्चन उसको हेलीकॉप्टर पे जॉय राइड के लिए लेके जाता है, हेलीकॉप्टर ऊपर खराब हो जाता है, अम्ब्रेला के सहारे नीचे आ जाता है। अब देखिए, ये सारे चित्रों को हमने एक एसोसिएशन चेन के द्वारा बांध दिया और आपने इसको तीसरा नेत्र से देख लिया। अब आपके मेमोरी में ये सारा चीज छप गया। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सारे याद हो गए होंगे। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले डॉग, किस कलर का? व्हाइट। इसके बाद शो, किस कलर का? ब्लैक। अगर पूछा जाए पिकनिक के बाद क्या था? अमिताभ बच्चन। रिवर के बाद क्या था? एलिफेंट। और तुरंत दिमाग में आ रहा है, एसोसिएशन आ रहा है। तो कोई भी चीज को याद करने के लिए चित्रों में बदलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब जिनका चित्र नहीं है उसको कैसे बदलेंगे? अब जैसे कहा जाए कि वो बहुत नम्र आदमी है, पोलाइट है। अब पोलाइट कैसे याद होगा? पोलाइट का चित्र आप देख सकते हैं, एक पोल है, पोल के ऊपर लाइट है। टोलरेंस पावर, सहन शक्ति। टोलरेंस को आप कैसे देख सकते हैं, क्या इमेज बना सकते हैं? टोलरेंस, टॉल, एक बहुत टॉल व्यक्ति है जिसको लोग धक्का दे रहे हैं लेकिन वो हिल नहीं रहा, उसके पास बहुत शक्ति है, टॉल व्यक्ति, टोलरेंस पावर हो गया। तो कोई भी चीज को आप बदल देंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हिंदी में जैसे मान लीजिए वफादार है, उसको इंग्लिश में लॉयल कहते हैं। अब इन दोनों को भी आप नेमोनिक्स बना सकते हैं। नेमोनिक्स आपके अंदर के डिक्शनरी पर निर्भर करता है, वो बंगाली में भी बन सकता है, उड़िया में भी बन सकता है, तमिल में भी बन सकता है, जो भाषा आप जानते हैं उसमें भी बन सकता है। ये आपके आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह चित्रीकरण करते हैं। अब लॉयल है, लॉयल को इंग्लिश के में से हम अगर कोई चित्र बनाना चाहें, लॉयल, लो आयल, हम देखेंगे कि एक लॉयल व्यक्ति है, उसको बोलते हैं लो आयल, हमारा थोड़ा मसाज कर दो, वो मेरा आयल से मसाज कर दिया, मालिश कर दिया, तो लॉयल हो गया। इसको इसका हिंदी वफादार है, वफादार, वफादार को हम बर्फ से देख सकते हैं कि एक आदमी बर्फ गिर रहा है और बिल्कुल वफादार है, और बिल्कुल बर्फ गिरते हुए भी फिर भी वो पहरे दे रहा है। तो इस तरह का इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे इमेज क्रिएट हो जाता है, आपका भाव एक चित्र में बदल जाता है, आपकी मेमोरी में छप जाता है। तो इस तरह मेमोरी को, मेमोरी बढ़ाने के लिए चित्रों की भाषा में बदलना बहुत जरूरी है। अब जैसे मुरली है, आप देखिए, ये आपके सामने एक मुरली है, 15 अप्रैल का मुरली है। उसमें कहा, परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे भोला नाथ मोस्ट वेलवेट बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। अब देखिए ये जैसे आप सुन रहे हैं इसको समझना है। जनरली हम शिव को हम शिवलिंग के रूप में देखते हैं और शंकर को शंकर जी के रूप में देखते हैं या भोलेनाथ को भी हम शंकर जी के रूप में देखते हैं, यानी शिव निराकार ज्योति स्वरूप का एक चित्रीकरण उनका शंकर के रूप में किया जाता है। अब आप यहाँ पे जैसे कोई बोलता है भोलानाथ, आप देख सकते हैं आपके सामने भोलानाथ है, शंकर भगवान है, हमारे सामने बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं है ना कि तुम मुझे प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म होते जाएंगे। अब देखिए वो बोल रहे हैं मुझे तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी। हमारे सामने मीरा भी बैठी हुई है, मीरा लगन है, लगन में मगन है, उसको परमात्मा बोल रहा है लेकिन वो कृष्ण के याद में लगन में मगन है। तो हमें क्या है उसकी तरह, परमात्मा कहते हैं उसकी तरह तुम्हारी लगन बढ़ती है। हमने क्या किया, एसोसिएट किया, तुलना कर दिया कि याद करेंगे जैसे मीरा याद करती है ना, याद की लगन में मगन है मीरा, वैसे हमें भी लगन लगाना है, याद की लगन लगानी है, याद की लगन में मगन रहना है और इससे क्या होंगे, विघ्न खत्म हो जाएंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे विघ्नों का भी एक रूप देख सकते हैं कि वो विघ्न ऑटोमेटिकली जल जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। मैं यहाँ लगन में मगन हूँ और पीछे ऑटोमेटिकली फायर जल रही है और कोई भी विघ्न आ रहे हैं उसमें जल जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो इस तरह हम चित्र बना सकते हैं। अभी जैसे प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो। अभी ये देखिए अभी भी खुद सोच रहे हैं कि स्वयं भोलेनाथ आपसे पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चों को क्या याद रहे ताकि कोई भी विकर्म न हो। अब इसका उत्तर याद रखना है आपको, है ना। तो आप इसको एक वीडियो देख सकते हैं वीडियो के रूप में। अभी उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अब आप देखिए कि आपको भोलेनाथ एक वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक फादर है वो केला खाया और छिलके फेंक दिया, पीछे पीछे उसका बेटा भी जा रहा है ना, वो भी केला खाया छिलका फेंक दिया, यानी जैसा बाप ने किया वैसा उसके बेटे ने किया। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा काम ना करो कि देखो जो अगला कर रहा है उसका पिछला भी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ऐसा तुम मत करो जिससे तुम्हें देख करके कोई गलत काम करे। तो ये पॉइंट याद हो गया। दूसरा है, अगर कोई छिप करके भी पाप कर्म करेंगे तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी, आगे चल और मार्शल लॉ हो जाएगा, इस इंद्र सभा में कोई पति छिप कर बैठ नहीं सकता। अब आप देखिए एक इंद्र सभा बैठी हुई है, एक इंद्र सभा, इंद्र बैठा हुआ है और सारे देवताएं बैठे हुए हैं और उस सभा में एक पतित बैठा हुआ है और उस पतित को एक मार्शल आता है और उठा करके बाहर लेके चला जाता है। जैसे पार्लियामेंट में आप देखते होंगे कि मार्शल उठा के लेके चला जाता है जब मारपीट होती है। तो उस तरह आप देखिए केंद्र की सभा में एक पतित व्यक्ति बैठा हुआ है छिप कर कोने में, मार्शल आता है और उसको मार्शल को धर्मराज भेजता है और बोलता है कि उसको उठा के ले आओ, और आप देखिए कि पीछे कोने कोने में से उसको खींच करके लेके बाहर लेके जा रहा है। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में चले गई तो मुरली का जो प्रश्न और उत्तर है आपको याद हो गया। अब बाबा ने क्या प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात याद रहे तो उनसे विकर्म नहीं होगा। तो क्या वीडियो में देखा, वीडियो में आपने देखा, उससे क्या शिक्षा मिली कि जो कर्म हम करेंगे उससे देख और भी करेंगे, इसलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना है। दूसरा आपने सीन क्या देखा कि इंद्र सभा में मार्शल निकाल के पतित आत्मा को लेके जा रहा है, यानी मुरली का उत्तर क्या है कि धर्मराज के आगे कोई छिप करके नहीं बैठ सकता, कोई भी कितना ही पाप छिप करके करे धर्मराज उसको माफ नहीं करेगा, आगे चल के मार्शल लॉ हो जाएगा, इस इंद्र सभा में कोई भी पतित बैठ नहीं सकता। तो इस तरह आपने एसोसिएट किया, एक बुद्धि में एक इमेज बना ली प्रश्न और उत्तर का, मुख्य सार का, तो ये आपकी मेमोरी में छप गया। तो डेली अगर आप मुरली समझे तो हो जाएगा। अभी इसमें गीत भी है, भोलेनाथ से निराला दुनिया में कोई नहीं, और भोलेनाथ से निराला दुनिया में कोई नहीं। आप देखिए कि आप गीत सुन रहे हैं, एक टेप बज रहा है और आप मेंटली सुनिए, एक गीत मैं सुन रहा हूँ, भोलेनाथ से निराला दुनिया में कोई नहीं, सभी डांस कर रहे हैं, मैं भी डांस कर रहा हूँ भोलेनाथ के आगे पीछे, ये मेंटल डांस हो गया गीत के ऊपर, ये भी याद हो गया आपको। उसी तरह कोई भी चीज पढ़ते जाएंगे तुरंत याद हो जाएगा। अगर आपको धारणा का सार भी याद करना है, जैसे धारणा के लिए सार है, यह समय बहुत नाजुक है इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। अब समय बहुत नाजुक है, अब समय का कोई चित्र होना चाहिए, समय का चित्र आप घड़ी देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, अब आप व्यक्ति देख सकते हैं कि एक व्यक्ति पेड़ के उल्टा, पेड़ से उल्टा लटका हुआ है और उसकी घड़ी भी लटकी हुई है और बोल रहे हैं तुम्हारा समय घड़ी बहुत नाजुक है, गिरने वाला है, सीधा हो जाओ, उल्टा कर्म मत करो, सीधे हो जाओ, है ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान सदा श्रेष्ठ कर्म करना। अब श्रेष्ठ कर्म को कैसे दिखाएंगे, उस उल्टे व्यक्ति को कहा गया कि आप उतर जाओ, है ना, आप कर्म को ठीक करो और श्रेष्ठ कर्म करो। श्रेष्ठ कर्म को आप किस रूप में दिखा सकते हैं, आप देख सकते, दिखा सकते कि एक मूर्तिकार है, वो मूर्ति बना रहा है, देवता की मूर्ति बना रहा है और श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, पत्थर को एक पूजनीय मूर्त बना रहा है, ये श्रेष्ठ कर्म हो गया। तो इस तरह आपको चित्रों की डिक्शनरी बनानी पड़ेगी कि किस चीज के लिए हमें क्या चित्र बनाना है। तो इस तरह बहुत सारे चित्र अगर आपके दिमाग में हो जाएंगे तो मुरली आपको सहज ही याद होती रहेगी, आप उस चित्रों में उनको फिट करेंगे। और इसी को ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान योग का मतलब ये नहीं कि हमने मुरली को पढ़ लिया और उसको दूसरों को सुना दिया, यही ज्ञान योग है। ज्ञान योग का मतलब जो भी हमने ज्ञान सुना उसका अंदर चित्र बनाया और चित्र बना करके उसको हमने देखा, उससे से हमारा बुद्धि का योग रहा, जोड़ रहा, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। इसी में बुद्धि घूमती रहेगी तो हम फालतू की बातें दिमाग में आएगी नहीं, नहीं तो मुरली पढ़ते रहेंगे दिमाग में दूसरी बातें आती रहेंगी। ध्यान से पढ़ेंगे तो मुरली भी याद हो जाएगी। अब दूसरा धारणा का सार है, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक विलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है, बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वो दान करना है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, योग से सदा के लिए। अब देखेंगे कि हम योग कर रहे हैं, योग करते ही हमारी काया कंचन हो गई, योग किया हम काले रंग के थे दम गोरे हो गए, दम काया जो हो गए निरोगी हो गए, ऐसा इमेजिन करना है। और निरोगी ही नहीं हुई, ऊपर से बारिश हो रही है, लक्ष्मी आके धन दे के चले गए, ये लो धन, अविनाशी धन, और मैं अविनाशी धन सबको दान कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन हो गया, मेरा हेल्थ भी अच्छा हो गया, धन भी हो गया, लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं धनों का दान कर रहा हूँ। तो ये इमेज योग से हमारा शरीर बदल गया और धन आ गया, धन देना, ये इमेज आते हैं दिमाग में, क्या आएगा, योग से काया निरोगी बन जाती है, अविनाशी धन मिलता है भगवान से और अविनाशी धन का हम दान करें। तो इस तरह आप उसको याद कर सकते हैं। अब इसी तरह वरदान है, वरदान शिव बाबा बोलते हैं कि बाप बच्चों को वरदान देते हैं, बच्चे वरदान नहीं लेते, सिर्फ बोलते हैं बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, लेकिन वरदान लिया, लेने का मतलब जो बाबा कहते हैं उसका मतलब क्या हुआ, लेने का मतलब हुआ कि उस वरदान का एक हमने इमेज बनाया और उस इमेज को दिन भर उस स्थिति में हम रहे, उसको हम कहते हैं वरदान लेना। अब जैसे वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अब देखिए जो भव है, मास्टर ज्ञान सूर्य भव, ये हमारा फाइनल इमेज है। ये हमें इमेज को बनाना है कि मास्टर ज्ञान सूर्य। अब ज्ञान का इमेज बनाना पड़ेगा, सूरज तो सूरज जैसा दिखाई दे देगा, लेकिन ज्ञान का सूरज वो कैसे होगा? ज्ञान का कलर क्या होता है? ज्ञान का कलर डार्क ब्लू होता है, नेवी ब्लू होता है। तो हम देखेंगे कि एक सूर्य है और उस सूर्य डार्क ब्लू कलर का है और डार्क ब्लू कलर की किरणें निकल रही है, रश्मियां निकल रही है, वो है मास्टर ज्ञान सूर्य। ऐसा आप देख सकते हैं। अब अपने अलौकिक रूहाने वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले हैं। अब इसका भी इमेज बनाना है, सर्व आत्माओं पर प्रभाव डालने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई है और ज्ञान सूर्य वो नीले रंग का है और उससे वेव्स निकल रही है, अलौकिक अलौकिक वेव्स, वृत्ति, वृत्ति मतलब वृत्त, सर्कल। तो सर्किल करके बहुत सारी रिंग्स जैसी किरणें निकल रही है और सारी किरणें नीले रंग की है और वो अलौकिक वृत्ति, इसको हो गया अलौकिक वृत्ति का इमेज, अलौकिक वृत्त सर्किल परमात्मा से आ रही है और जितनी आत्माएं हैं वो सारी आत्माओं के अंदर रिंग्स बनती जा रही है, उनके ऊपर एक छाप पड़ता जा रहा है, छाप पड़ता जा रहा है। सारी आत्माएं ज्योति स्वरूप है, उन ज्योति स्वरूप के चारों तरफ वो रिंग्स आ गया। जैसे आपने सैटर्न प्लैनेट देखा है, शनि ग्रह के बीच में बॉल है और चारों तरफ एक रिंग है, उसी तरह आप देखिए कि बहुत सारी आत्माएं हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य से जो नीले किरणों की रिंग आ रही है वो अलौकिक वृत्ति है और वो अलौकिक वृत्ति सारी आत्माओं के चारों तरफ रिंग बना दे रही है, यानी हर एक आत्माओं के ऊपर छाप छोड़ रही है। तो इस तरह हम मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाते हैं। तो इस वरदान का एक इमेज आपने बनाया तो याद हो गया। आप फिर से आप ध्यान देखें, अपने अलौकिक रूहाने वृत्ति द्वारा हर आत्माओं के ऊपर प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। तो ये इमेज आपने अपने मन में ड्रॉ किया और याद हो गया आपका। आप पढ़ सकते हैं, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। अब आप देख सकते हैं इसमें भाव बोल रहे हैं कि अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है, जितनी आत्माएं हैं वो सारी आत्माओं के ऊपर तो छाप पड़ी रही है, रिंग्स हैं और वो सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट की तरह, ज्ञान सूर्य की तरफ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो इस तरह आपको ये वरदान याद हो गया। उसी तरह स्लोगन है, सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्वशक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। अब सर्वशक्तियों को आप दिखा सकते हैं कि आपका राज दरबार है, आपके सामने अष्ट शक्तियों चार इधर और चार इधर लोग खड़े हैं, जैसे दरबार में लोग खड़े रहते हैं, चार इधर खड़े हैं, चार इधर खड़े हैं और आप आते हैं, आपका एक सीट है, इस सोमान को सीट पर बैठ जाते हैं, वो लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं जी हुजूर आप आदेश थे, हम करने के लिए तैयार हैं, और आप सोमान के सीट पर बैठ जाते हैं आराम से, मैं ये मेरा सोमान का सीट है और आज का सोमान मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये मेरा सोमान है, सारी शक्तियां हमारी ऑर्डर मानने के लिए तैयार है। तो ऐसा एक विजन बनाएंगे तो मुरली पढ़ने में मन भी लगेगा और मुरली समझ में भी आएगा और ये है असली ज्ञान योग, यानी हमारा ज्ञान जो परमात्मा का ज्ञान है उसका योग हमारी बुद्धि से हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि ज्ञान को हमेशा चित्रों में ग्रहण करती है, बिना चित्र का ग्रहण नहीं करती। बुद्धि की समझ हमेशा चित्रों में होती है, इसलिए जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते, कंपेयर नहीं करते, उपमा नहीं देते, तब तक किसी को कोई बात दिमाग में नहीं आती है। सारी चीज लॉजिकल चीजें जल्दी समझ में नहीं आती है, वो भूल जाते हैं। कहानियां समझ में आती है क्योंकि कहानियों में चित्र होते हैं। तो इस तरह मुरली को भी याद करने के लिए आपको ज्ञान मुरली को चित्रों में बदलना पड़ेगा और आपको ये पूरी मुरली याद हो जाएगी, कोई भी मुरली हो। तो आपको ऐसा अपने ज्ञान का, चित्रों का डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। जैसे मैं शांत स्वरूप हूं, अब शांत स्वरूप का तो इमेज बनाना पड़ेगा। मैं शांत स्वरूप हूं तो कैसा दिखेगा, मैं शांत हूं तो कैसे दिखेंगे, ऐसा देखना पड़ेगा। मैं प्रेम स्वरूप हूं तो प्रेम स्वरूप कैसे हो, तो हरेक का अलग अलग आपका चित्र बनाना पड़ेगा और चित्र रंगीन बनाना पड़ेगा तो इजी हो जाएगा। हरेक का अलग अलग गुणों का रंग है। प्रेम स्वरूप हो तो आप देख सकते हैं मेरे ऊपर जो क्लोदिंग है, कॉस्ट्यूम है, वो पूरा हरे रंग का हो गया। मैं प्रेम स्वरूप बन गया, मैं परमात्मा को हगिंग कर रहा हूं। कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। इसी को बोलते हैं परमात्मा रंग में रंगना। परमात्मा ने कहा होली की मुरली में कि परमात्मा रंग में रंगो। रंग में रंगने का मतलब क्या हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं हुआ ना, जरूर कलर हुआ। प्रेम स्वरूप का चित्र और शांत स्वरूप का चित्र और सुख स्वरूप का चित्र, हर चित्रों में अंतर होगा ना। जैसे हम गुलाब जामुन खाएं, जलेबी खाएं, बर्फी खाएं, तो इन तीनों का टेस्ट भी अलग होगा, शेप भी अलग होगा, स्वरूप भी अलग होगा। तो उसी तरह मैं ज्ञान स्वरूप हूं, चाहे मास्टर ज्ञान सूर्य हूं या शांत स्वरूप हूं या मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो ये सबका चित्र तो अलग अलग होगा ना। ये चित्र तो बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। बाबा ने इतना सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन जब तक ज्ञान को हम चित्रों में नहीं बदलेंगे तब तक हमारा ज्ञान योग भी नहीं होगा और असली योग भी नहीं लगेगा। कि योग का मतलब हुआ बुद्धि योग, और बुद्धि योग का मतलब हुआ कि बुद्धि को पॉजिटिव चित्रों से भरना, तो हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी, मुरली भी याद हो जाएगी और योग भी लगेगा और ज्ञान योग सहज योग में बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।